So indeed, I am very, very happy once more to his what's the institution during his father's, isn't it? Your father? Your father. I think when I came here, you see that. So I know the. His sort of father's time, I know. Oh, wonderful person, really. No more. It's quite natural. Human life go that way. New face come, old face disappear. So the important is, while we alive, our life should be meaningful. So that at the time of our death, no regret. I spent, I use my life for meaningful. Meaningful means not just making money or fame, helping other, serving other. We are social animals. So each individual have the responsibility, or moral responsibility, to help other human brothers, sisters. So then your life become meaningful. Like this institution, I think really helping a lot of people, not only just one style of education, but more variety, is really useful. So whether students utilize this knowledge properly or not, that's up to individual, up to them. But you provided, I think, opportunity or facility. Wonderful. Thank you. So now, there are now 4 days here, mainly some sort of explanation about Buddha Dharma. So at the beginning, I usually call the first. I think first generation of Buddhist student, I think the Pali tradition. So at the beginning, Manganam Sutra, recitation of Manganam Sutra. Okay. Kunthu Shingyo, na? Manganam Sutra? Okay, Manganam Sutra, yes. So recite Manganam Sutra. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Bhagavato arahato
evaṃ me sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavān viharati jetavane anātapindi arame atako anyatara devata abhikanta yaratya abhikanta vanna kevala kappam vetavanam obhasitva yena bhagavati upasankami upasankamitva bhagavantam abhivaditva ekamantam atthasi ekamantam titako sa devata bhagavantam gathaya ajjabhasi bahu deva manusacha mangalani achintayu akankamana sutthanam brihi mangalamuttamam asevana cha balanam panditanam cha sevana Puja cha pujaniyanam etam mangalam uttamam bahu sacanca sipanca vinayoca susikkito subhasita cayavaca etang mangalam uttamam pati rupa desa vaso ca
pubbe ca kata punyata atta samma panidicca etang mangalam uttamam
bahu sacanca sipanca vinayoca susikkito subhasita cayavaca etang mangalam uttamam pati rupa desa vaso ca pubbe ca kata punyata atta samma panidicca etang mangalam uttamam mata pitu upatthanam putta darasa sangaho anakula ca kammanta etang mangalam uttamam arati virati papa majja pana ca sanyamo appamado ca dhammesu etang mangalam uttamam tapo ca brahmacharyanca
ariya sacchana dassanam nibbana sacchi kiriya ca etang mangala muttamam buddhassa loka dhammehi cittam yassana kampati asokam virajam kimam etang mangala muttamam etadisani katvana sabbattam aparajita sabbatta sottin gacchanti tanti sang mangala muttamanti.
Thank you. Ta? Heart Sutra Sanskrit Shenge Yamarwa. Ka? Oh. Good. Already done. Then perhaps Pindu Chujung Koyo. Pindu Chujung. The tips have Savadanar.
Shokdam Indu. Shokdam, it doesn't have any page numbers. Unfortunately.
One more.
Right after the Heart Sutra.
In that booklet. Kasa. What page? Eight and nine. One sort of text I composed.
Two, three. Page number 8 or 9 par ye diya gaya hai. और हिंदी में 10 पेज नंबर 10 पर आप देख सकते हैं.
इंग्लिश ही और इंग्लिश दो का
अंग्रेजी में 8 और
आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हियर आई थिंक English speaking. Then read English kasade. Page kore. But English there. The praising 17th Nalanda masters. Okay. So now. Pidi diko tu diko le merom pada.
Iya na satre.
And then also people in outside. So those people who prefer English, then read English. And then those prefer Hindi, but the Hindi also here.
Jo abhi aap logo ko jo
The reason Why I compose this Vasudeva Kasa praise story? 따뜻아, 내 표가 날라구인다. Now I explain. Actually, you see, they wrote in the Kasada, Shukri. 따뜻아, round the law, the Ranyan. Lodging. Study should a Ting Du Zamlin Chen Dir, Tsenri Tang, Chuji Mobo Yarke, Sadur Chindi, Denam Dunzi Nami Tukchi Kum Dir. Rangri Sanji Jinju Wanam, Sanji Chuzula, Shin and Taba Toba Shukoga Shindu Cheves.
So at the end of this 17 praise with the 17 Nalanda masters, His Holiness has written that at this time when the world has so much distraction from scientific inventions and so forth, and also weapons and others, we need to develop a faith based on it's very crucial for us to develop faith based on reason.
The English translation, Dugorbe.
Laul.
So the basically, it's a Rapto translation, something like Buddhism, Buddha Dharma, now more than 2,500 years, now almost 600 years, 2,600 years. I usually call those people, whether Indian or Tibetan or Nepalese or Chinese or Japanese or Korean, Burmese, Thai, or all this, so on. You see, all those Buddhist countries, we should be 21st century Buddhist. That means, you see, Buddhist faith with the fuller knowledge about the whole system of Buddha Dharma. Traditionally, we simply recite, you see, a few sort of text and a few prayer and a close eye. Buddha Mishanam Gacchami, Dhammasanam. That's not sufficient. Quite often, you see, Tibetan, also some Chinese and also some Indians, you see, they recite Buddha Mishanam Gacchami. Then, and after that, when I ask, what is Buddha? Most cases they say, we don't know. So many Tibetan also, you see, consider themselves as a Buddhist. But simply like the tradition, way of life, without knowing the real Buddhist teaching. So now, we should be Buddhists with full knowledge. Buddha, something really as a respected person. Why? In order to judge the person, his daily conduct, and mainly his knowledge. Knowledge examine his sort of talk, his teaching. And so, when we examine the person is truly, what kind of person? We cannot judge the person on the basis of their face or beautiful face. Or nice face, we can't say that. We have to examine his knowledge and his experience, our spiritual case, his deeper experiences. So that also, now, we have to judge about his sort of expression, his teaching. Then we know oh, that person, quite remarkable. Because, you see, when we examine his teaching, something, intellectual level also, you see, quite marvelous, fantastic. And then also, you see, these teachings implement the real sort of transformation about our emotion take place. So therefore, that teacher is quite reliable. So in order to know Buddha, you have to know about Dharma. Without knowing Dharma, difficult to understand the Buddha, the quality of Buddha. Buddha himself, you see, through the Sangha, he practiced originally like us, just ordinary, very, very ordinary sentient being, then practice, through practice, from centuries to centuries, he practiced, then his own sort of lifetime, like 6 year fasting practice, meditation. Through that way, he achieved enlightenment. So Buddha himself once developed a certain sort of spiritual experience with fuller knowledge. Then when level is certain level, then he become Sangha. Then through practice continuously, then eventually become Buddha. So therefore, so now, yes, translate now.
Yes.
धीरे धीरे हम नष्ट हो जाते हैं, तो ये जीवन जीने की या जीवन की एक प्रक्रिया है। जब हम जीवित होते हैं तो उस समय हमें अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाना चाहिए, और मृत्यु के समय जब हमारी मृत्यु नज़दीक आ जाए, मृत्यु आ जाए, उस समय पश्चाताप करने की जरूरत नहीं होती है। मैं भी अपने जीवन को अर्थपूर्ण मानता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं काफ़ी प्रसिद्ध या काफ़ी कुछ मैंने प्राप्त किया है इस वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से कि मैं काफ़ी खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं अपने जीवन को अर्थपूर्ण मानता हूँ। इसी प्रकार से सभी लोगों को एक दूसरों की मदद करनी चाहिए, एक दूसरों का सहयोग करना चाहिए। अगर हम इस प्रकार से एक दूसरे के मदद और सहयोग करते हैं, तब जाकर के जान सकते हैं कि हमारा जीवन अर्थपूर्ण है। यह संस्थान भी जो कि सुमाया संस्थान है, काफ़ी लोगों की मदद करता आ रहा है। यहाँ बहुत सारे शिक्षक लोग हैं, यहाँ बहुत सारे छात्र लोग हैं जो कि पढ़ाई करते हैं, उसके बाद दूसरों को लाभ पहुँचाएंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। तो धर्म के बारे में जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, यहाँ पर कुछ वक्तव्य हैं, तो मैं सबसे पहले हमेशा यही कहता हूँ कि जो बौद्ध धर्म की परंपरा है उसमें पाली परंपरा श्रेष्ठ है, अर्थात सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई, इसलिए पाली जो महामंगल सूत्र का पाठ किया गया। और उसके बाद जो नालंदा के 17 विद्वान के बारे में परम पावन जी ने रचना की है, उसके बारे में कि इस ग्रंथ की रचना करने का एक मुख्य उद्देश्य या कार्य ये रहा है कि आज के युग में हम लोगों ने विज्ञान के युग में बहुत सारी विकास किया है, लेकिन उस विकास के अंदर भी हम किस प्रकार से जी सकें या किस प्रकार से अपने जीवन को सार्थक बना सकें, इस वजह से इस ग्रंथ की रचना की। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध का धर्म इस युग में आया, अर्थात भगवान बुद्ध पैदा हुए। तो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि चाहे वो भारतीय हों, तिब्बती हों, जर्मनी के हों, अन्य अन्य देश कहीं के भी लोग हों, उनसे मैं कहता हूँ कि पहले आप धर्म के बारे में अच्छे से जाने, धर्म को अच्छे से समझें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग अभी 21वीं शताब्दी भी हैं और 21वीं शताब्दी के बौद्ध हैं, तो 21वीं शताब्दी के बौद्ध होने का मतलब ये है कि हम जो रीत रिवाज है उनको ज्यादा न महत्व देते हुए धर्म की विशेषताएं क्या हैं, धर्म क्या है, इसको ठीक तरह से समझ सकें, तब जाकर के हम 21वीं सदी के बौद्ध धर्मावलंबी कहलाएंगे। तो चाहे तिब्बती हों, चीनी हों, यहाँ तक कि कुछ भारतीय लोगों को भी मैंने देखा है कि वो अपना जीवन या अपने धर्म की जो प्रक्रिया है या धर्म का अभ्यास है ज़्यादातर पूजा पाठ के रूप में बिताते रहते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि इस प्रकार से पूजा पाठ में जीवन को गुजारें और समझें कि वास्तविक धर्म है तो ये वास्तविक धर्म नहीं है, इसलिए आपको अच्छी तरह से धर्म को जानना चाहिए। केवल ऐसा ही नहीं है कि अन्य देशों में है, तिब्बती लोगों में भी या तिब्बती जो धर्म अनुयायी हैं उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पूजा पाठ को महत्व तो ज़्यादा देते हैं। तो उनसे भी मैं अनुरोध करता हूँ कि जो धर्म का सार है, जो धर्म है, उसको समझना चाहिए। तो हम सभी को अगर अच्छा एक बौद्ध बनना है तो बौद्ध धर्म के बारे में पूर्ण ज्ञान को जानना चाहिए, और किसी व्यक्ति या गुरु की पहचान करने के लिए उसको उसके व्यवहार को जानना जरूरत होती है कि अमुक व्यक्ति अच्छा है कि नहीं, उसके व्यवहार को समझना चाहिए, उसके ज्ञान को समझना चाहिए। और उसके ज्ञान को तभी समझा जा सकता है जब उसके व्यवहार को समझें, उसकी शिक्षाओं को समझें, उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। किसी व्यक्ति को चेहरे को देखकर नहीं कहा जा सकता कि अमुक व्यक्ति काफ़ी विद्वान है या काफ़ी अच्छा है, उसकी शिक्षाओं को समझना चाहिए और उसकी जाँच पड़ताल करनी चाहिए। और जब तक हम उसकी शिक्षाओं को नहीं जानेंगे, जब तक उसकी अभिव्यक्ति को नहीं समझेंगे, तब तक हम उसकी सच्चाई को नहीं जान सकते। इसलिए अगर कोई भी शिक्षक कोई भी शिक्षक हो और उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसके अनुभव को समझना चाहिए कि उस जो अनुभव के अनुसार कह रहा है, अपनी शिक्षाओं को दे रहा है, अनुभव के अनुसार दे रहा है, तो ज़्यादा अच्छी शिक्षाएँ होती हैं। अनुभव के द्वारा कही गई शिक्षाएं कहीं ज़्यादा गंभीर होती हैं। तो बौद्ध धर्म को जानने के लिए हमें बौद्ध धर्म की जो विशेषताएं हैं उसको समझना चाहिए। जब हम बौद्ध धर्म की विशेषताओं को समझेंगे तब हम भगवान बुद्ध को समझ सकते हैं, धर्म को समझ सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने खुद ही अपनी कठोर मेहनत करके 6 साल तक तप किया, उसके बाद भी आजीवन तक वो अभ्यास में लगे रहे और धर्म का अभ्यास करते रहे, दूसरों को कराते रहे। उसी प्रकार से उनका संघ भी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में संलग्न रहा, उनका अभ्यास करता रहा। बुद्ध ने खुद अनुभव करके ये सारी चीज़ें प्राप्त की हैं। उन्होंने 6 साल तक कठोर तपस्या करने के बाद ही उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ, मेहनत करके करने के बाद ही उन्होंने इस बुद्धत्व रूपी फल को प्राप्त किया।
तादिशांदे सिंधु खेचेवेस सुले थेसोंग के कोने शिमुल ताक्षिंग चेदे क्युजन सोवाथां मुझुगे
मिंदु फेग मिंदु दिला
I would like to express this today through my broken English. Or sometimes I give warning. My sort of English vocabulary very limited. No proper grammar. So sometimes my broken English is a may kasoda. May carry wrong meaning. So when people listen Dalai Lama's broken English, be careful. Okay. So now the essence is when we examine anything, including teaching, we must unbiased, open our mind and unbiasedly, then investigate. In order to carry thorough investigation, you need some level of skepticism. skepticism brings question. Questions bring the enthusiasm to investigate. Through investigate, you get answer. So right from the beginning, you accept, oh, yes, 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 fantastic, fantastic. Then no ground for thorough investigation. So therefore, the open mind, at the same time, skepticism, unbiased, examine objectively. So for that, then these great masters of Nalanda institution, they even sort of examine Buddha's own word, thoroughly investigate. Or if you accept literally this Buddha's teaching, or it contradicts with reasons, so we cannot accept literally. Nagarjuna, Aryadeva, all these, particularly Madhyamaka philosopher, you see, they carry that way. That also is Buddha himself. You see, express, oh, my follower should not teach, my follower, bhikshus and scholars should not accept my teaching out of faith, out of devotion, but rather thorough investigation and experiment. So that's Buddhism in general, particularly the Nalanda tradition. That's the Nalanda tradition. So like Nagarjuna, as I mentioned earlier, you see, like Nagarjuna, these, you see, even examine Buddha's own word. So these things, these shows, you see, they, Buddhism in general, particularly Nalanda tradition, there's very much emphasis reasons. So for that reason, these texts wrote by 17 Nalanda masters, very, very helpful. Although these texts give me, when I was very young, 7, 8 years old, these texts, according to our tradition, we have to learn by memorize some of these texts. Not all, of course, cannot. Some of these texts you have to memorize, learn by heart. So these texts really gives me a lot of trouble. So now, as a gratitude to those sort of masters whose writing really gives me a lot of sort of burden. Now, later I found extremely useful. So therefore, I compose this prayer, this praise, like that.
तो जैसा कि इस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जब भी हम किसी भी शिक्षा को स्वीकार करें तो उसको अच्छी तरह से जांचना चाहिए. जांच भी तटस्थ भाव से करना चाहिए, उसमें संलिप्त न होकर के तटस्थ भाव से उसकी जांच करना चाहिए. तो पूर्ण रूप से जांच के लिए हमें इस प्रकार के अपने चित्त को, अपने मन को तटस्थ रखना चाहिए. और जब तक कि हमें जांच पड़ताल के दौरान उत्तर न मिल जाए, तब तक हमें केवल यही ठीक है, ये जो कहा गया वही ठीक है, इस प्रकार की सोच रख करके स्वीकार नहीं करनी चाहिए. हमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना अपने चित्त अर्थात दिमाग का उपयोग करना चाहिए, उसको ठीक तरह से जांचना चाहिए. तो नालंदा के महान विद्वान जो हुए हैं, यहाँ 17 विद्वानों का जिक्र किया गया है, उन 17 विद्वानों ने या उससे ज़्यादा भी विद्वानों ने उन जितने भी प्रकार की शिक्षाएं दी हैं वो पूर्ण रूप से जांच पड़ताल के दौरान ही दी हैं. उन्होंने खुद भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अच्छी तरह से समझकर जांच करके ही उन्होंने उन पर ऊपर टिप्पणी दी है. तो बिना जांच किए उन्होंने किसी भी शिक्षा को स्वीकार नहीं किया. इन जांच करने वाले अर्थात तर्क के आधार पर शिक्षाओं को स्वीकार करने वाले विद्वानों में अक्सर नागार्जुन, आर्यदेव और खासकर जो माध्यमिक दर्शन के विद्वान लोग हुए हैं उन्होंने इस प्रकार की जांच पड़ताल की है. भगवान बुद्ध ने खुद ग्रंथों में लिखा है कि हे मेरे भिक्षुओं, मेरे अनुयायियों, मेरी शिक्षाओं को इसलिए मत मान लीजिए क्योंकि ये किसी विद्वान के द्वारा या किसी महापुरुष के द्वारा की गई है। इस मेरी शिक्षाओं को जांच के द्वारा, जांच पड़ताल के दौरान मानिए, तभी जा कर के उसको स्वीकार करिए। इस प्रकार से देखा जा सकता है कि भगवान बुद्ध ने हम लोगों को या भगवान बुद्ध के अनुयायियों को पूर्ण रूप से खुली छूट दी है कि किस प्रकार के उनकी शिक्षाओं को हम समझ सकते हैं, अपने ज्ञान के आधार पर किस प्रकार से उसको समझा जा सकता है। तो नालंदा की जो शिक्षाएं हैं, मेरा भी जो शिक्षा या दीक्षा हुई है नालंदा परंपरा पर ही आधारित है। मैं बचपन से ही, जब मेरी आयु 7 या 8 वर्ष की थी, उसी समय से मैं भगवान बुद्ध के दर्शन नालंदा की शिक्षा पर आधारित होकर ही पढ़ता आया हूँ। इन ग्रंथों को मैंने पढ़ा है और तिब्बती परंपरा के अनुसार ऐसी परंपरा है कि इन ग्रंथों को मुझे मौजवाने याद करना पड़ता था, तो इन विद्वानों के द्वारा जो ग्रंथ हैं उनको याद करने में, समझने में काफ़ी दिक्कत हुई। उन्होंने मुझे काफ़ी वजन दिया, काफ़ी मेहनत करने को दी।
Then another sort of reason, I think in 19th century, I think late 19th century, at the beginning of 20th century, you see some people, after they visit Tibet, they sort of notice, oh, Tibetan. So they really found lamas. And the lamas also, you see, found high throne. There are a lot of pujas like that. Then some lamas with a wife drink. So then those Westerners, you see, who visited without knowing the real sort of teaching of Tibetan Buddhism, teaching or real system of Tibetan Buddhism, then they simply call Lamaism. And also, you see, they do not understand about a tantric sort of system. It's difficult to understand. And people, I think generally, without knowing the real meaning of Buddhist Tantrayana, they simply, you see, they love, you see, carry some sort of rituals like that. So therefore, some people, you see, say Tibetan Buddhism is not genuine, true Buddhism, but Lamaism. So therefore, the real Tibetan Buddhism, introduced by 8th century Shantarakshita, he was 8th century, I think 7th century, 8th century, he was, I think, almost one of the top scholars and masters of Nalanda. So he invited by Tibetan emperor, he introduced Buddhism according to Nalanda tradition. So therefore, about 300 volumes eventually translated, mainly Sanskrit, and then also Pali, and maybe some Nepalese, and about 10-15 volumes translated from Chinese, but the rest of the major sort of portion translation from Sanskrit, from India. So therefore, till now, we study rigorously these texts. And commentary wrote by Tibetan, I think a few thousand volumes. All, you see, based on Nalanda master's writing. And of course, Buddha's own sort of teaching. We call Ganjur, that's some Buddhist teaching, about 100 volumes. as far as Gangurji is concerned, I think more volumes in Chinese translation than commentary wrote by Indian masters such as Nagarjuna. I think more volumes in Tibetan. Chinese seems less. But Gangur, I think more in Chinese translation. So like that. So therefore, then later, Kudra goes. 주로 구하래. 조집해야 돼. 아. 조집 말해. 조집. 아.
조집.
죽지. 응? The 11th century, Dibhamgara Adisha, Bengali, also invited. Then Tibet already decentralized. Or disintegrated. So this shows that our tradition come from Nalanda tradition. So therefore, I often sort of expressing, you Indians, historically, our guru. We are chela. Truly. More precise. Ancient Indians were our guru, not modern Indian. Modern Indians, too much westernized. Though, of course, your dress, Indian, but your mind, more westernized. I don't know. I joking. Of course, this is modern education, modern technology. These are very, very important as a country, and particularly India, over a billion population, and a lot of poverty there. We need more dynamic economic development for that modern technology, modern science. Modern education are extremely important. But at the same time, you should not forget your 1,000-year-old, your real sort of knowledge here. I usually call modern education related with mainly material value. Ancient Indian education, Indian knowledge is mainly related with inner world. That should not neglect. So, modern Indian, a little bit sort of negative about that. So in any way, I often use telling, we are not only chela of ancient Indian guru, but also quite a reliable chela. Truly. While guru's own land, see, a lot of sort of damage or a lot of sort of ups and downs. Then during those period, you see, we Tibetan kept intact all this knowledge. So it is quite sufficient to prove we are reliable chela. Isn't it? So now, I would like to recite this prayer, this praising.
तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही देखा गया है कि कुछ लोग खासकर विदेश के लोग जब चीन वो तिब्बत में आए तो वहाँ देखा कि यहाँ पर जो लामा परंपरा है या जो तिब्बती परंपरा है तो उसको उन्होंने देखा और देखा कि कुछ लोग जो गुरु लोग हैं उच्च आसन पर बैठते हैं पूजा करते हैं यहाँ तक कि कुछ लामाओं के पत्नी भी होती हैं शादीशुदा हैं तो उन्होंने अलग अलग अर्थ उसके लगाने शुरू कर दिए तो उनकी भी कमी नहीं थी उनकी भी कोई गलती नहीं थी हालांकि वो इस परंपरा को इस व्यवस्था को समझ नहीं पाए इस वजह से वो अलग अलग अर्थ लगाते रहे तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि बौद्ध धर्म जो तिब्बत का जो बौद्ध धर्म है वो वास्तविक बौद्ध धर्म नहीं है उस परंपरा को वो ठीक से न समझ पाने के कारण उन्होंने इस प्रकार की टिप्पणी की, इस प्रकार की बातें की। तो खासकर अगर तिब्बत में बौद्ध धर्म की बात की जाए तो 8वीं शताब्दी से शुरू होती है। वहाँ पर भारत के अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय के प्रखंड विद्वान भिक्षु संत रक्षित जी तिब्बत में गए और बौद्ध धर्म को यहाँ से ले गए और धीरे धीरे बौद्ध धर्म का परिचय कराया। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि संत रक्षित जी जो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रखंड विद्वान थे, उन्होंने ही तिब्बत में जाकर के इस परंपरा की शुरुआत कराई। और इस शुरुआत करने के बाद जितने भी जो ग्रंथ थे वो खासकर संस्कृत में हुआ करते थे, उन संस्कृत ग्रंथों से तिब्बती ग्रंथों में अनुवाद होने लगा और उन संस्कृत से लगभग 300 की संख्या में उनका अनुवाद हुआ। तो कुछ ग्रंथों का अनुवाद चीनी भाषा से भी हुआ। और ज़्यादातर अगर देखा जाए, ज़्यादातर तिब्बती बौद्ध धर्म के ग्रंथों की संख्या देखे जाए तो वो संस्कृत से ज़्यादा है, ना कि चीनी भाषा से। टीकाओं के बारे में भी यहाँ जिक्र किया गया कि टीकाएं जो है तिब्बती भाषा में ज़्यादातर संस्कृत भाषा से की गई है। इनकी संख्या हजारों की संख्या में है। और इसके बाद भी जो कांगे और तांगे अर्थात शास्त्र और सूत्र हैं, इनकी भी जो अनुवाद है वो तिब्बती भाषा में बहुत रूप से हुआ है, प्रकांड रूप से हुआ है। तो भारतीय विद्वानों की टीकाएं हैं उनको भी देखा जाए तो उन टीकाओं का भी अनुवाद तिब्बती भाषा में प्रचुर मात्रा में देखा जा सकता है। और चीनी भाषा से भी काफ़ी टीकाओं का अनुवाद है। तो 11वीं शताब्दी के अंत में या 11वीं शताब्दी में भारत के प्रकांड विद्वान अतिश दीपांकर श्री ज्ञान जो कि बंगाल के रहने वाले थे और तिब्बत में गए, उसके वहाँ पर उन्होंने बौद्ध धर्म का विस्तार किया। फिर उसके बाद 11वीं या 12वीं शताब्दी के बाद से वहाँ तिब्बत में जो बौद्ध धर्म धीरे धीरे ह्रास होने लगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो परंपरा है अर्थात तिब्बत की जो परंपरा है वो नालंदा परंपरा है। मैं हमेशा आप भारतीयों से कहता हूँ कि आप लोग हमारे गुरु हैं। केवल गुरु ही नहीं हैं हमारे, आप लोग हमारे गुरु हैं, हम लोग चेला हैं। और हम केवल चेला ऐसे ही नहीं हैं, काफ़ी भरोसेमंद चेला हैं। और खासकर अब जो हम गुरु और चेला की बात कहते हैं तो वो खासकर प्राचीन भारतीय जो परंपरा रही है, जो ज्ञान है, जो दर्शन है, उसके अनुसार हम लोग चेला हैं और आप लोग गुरु हैं। और आज की परंपरा में देखा जाए तो आज आप लोग जो हमारे गुरु हैं वो ज़्यादातर पाश्चात्य अर्थात विदेशी जो वेस्टर्न सिस्टम है उसमें ज़्यादातर ढलते जा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोगों को वेस्टर्न या जो हमारी पाश्चात्य सभ्यता है उसका स्वीकार नहीं करना चाहिए, आपको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भारत को भी विकास करने की आवश्यकता है, भारत को भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आप लोगों को भी विकास करने की परम आवश्यकता है। लेकिन जो हमारी जो हजारों वर्ष पूर्व की परंपरा है, जो हमारी प्राचीन परंपरा है, जो हमारी बौद्धिक परंपरा है, उस परंपरा को आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए, उसको संजोकर रखना चाहिए, सीखना चाहिए। क्योंकि जो प्राचीन परंपरा है वो आंतरिक दुनिया है, वो हमारी आंतरिक दुनिया को के लिए लाभदायक है, हमारे ज्ञान के लिए लाभदायक है, उसको संजोकर रखना चाहिए, उसको आप लोगों को नकारना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हम लोग काफ़ी भरोसेमंद चेला हैं। इसलिए और एक दूसरी बात कि अभी तक हम तिब्बती लोगों ने आपकी जो परंपरा है, आपकी जो संस्कृति है, वो हजारों वर्षों तक ठीक से संजो करके रखा हुआ है, उसको आप लोगों को आगे आकर के और विस्तार करना चाहिए।
First, I would like you to recite the mantra of Heart Sutra. Masam jemi shiro pare jem ma ye menga nage ngo ni so so rang ye shi ji tu sum ge yong la cha sen lo te ya tha ga de ga de pa ra ga de pa ra sam ga de bu de so te ya tha ga de ga de pa ra ga de pa ra sam ga de bu de so Teyata gade gade parangade parasamgade buddhiso ha. Nyendu shiwa zono kunshi niji nyeshi tenze kanyeda. Rola penpa jena lamshi niji jiden tenro zep. Kanta yanda tenpe tono nambo kunde naro nisungpa nyendu shanshu senpe. Sanje kini yumdela chasen loo.
kāngi tēnjī rāvā, rōng kākvā mē bā, jē mē bā, chē bā mē bā, tam ōhā mē bā, dō mē bā, tātē tēmī tēnjī mē, dō bā nyē shē shē tēn bā, sō bē sāng jē mā, tām bā tē lā chā tē lō. Now recite that. Pindu chūtīn.
Tō, sābse pēlē.
Pēkē, shtīngē, pēkē. Kēn rūl dūk bārē. Okay, now we will recite Tibetan. You those, prefer read English, then English translation. Then those, I said they prefer Hindi, a Hindi translation. So all three languages simultaneously. So then in the hall you see a strange sound. Okay, let us read now. Dola Penji Tuji Rav.
The God of gods, arisen from the compassionate wish of benefiting wandering beings, has attained transcendent protection, abandonment, realization, and liberates sentient beings through teaching. Dependent arising, I bow my head to you, the conqueror, son amongst teachers. I call to mind esteemed Nagarjuna, who has prophesied, introduced the Madhyamaka system, the an excellent path, and who was skilled in clarifying the meaning of suchness, free of extremes, the intention of the mother of the conquerors. Through the profound logical presentations of dependent arising, I call to mind the Bodhisattva Aryadhiva, who is his principal spiritual son, peerlessly learned and accomplished, who traversed the ocean of Buddhist and other philosophical systems, who is the glorious crowning jewel amongst all the holders of Nagarjuna's teachings. I call to mind esteemed Buddha Palita, who clarified the ultimate meaning of dependent arising, the thought of the superior, the essential point of the profound existence as mere designation and name, and who has ascended to the utmost state of accomplishment. I call to mind Acharya Bhavaviveka, who introduced a philosophical system that refuted such extremes as truly existent production, and yet accepted the shared perception of valid cognizers and external objects. I call to mind Chandrakirti, who promulgated the complete path of the sutra and tantra, sutras and tantras, who was skilled in expounding the profound and vast middle-way system in which appearance and genesis eliminate the two extremes through dependent arising and the merely conditionality of things. I call to mind the Bodhisattva Shandideva, who was skilled in teaching the host of fortunate disciples, a truly marvelous path of great compassion with the versatile means and reasons of the profound and the best. I call to mind the great Abbot Chandrakshita, who introduced the middle way to suit the disciples' mental dispositions, was well versed in expounding and the rationale of middle way and valid cognition, and disseminated the teaching of conqueror in the land of snows. I call to mind it. Esteemed Kamalashla, who thoroughly explained how to meditate systematically on the middle way through free thought, free from extremes, and the union of meditative quiescence and special insight according to the sutras and tantras, and flawlessly clarified the conqueror's doctrine in the land of snows. I call to mind esteemed Asanga, who Maitreya inspired and looked after, who was adept in disseminating all the Mahayana sets of discourses, who revealed the vast path and it prophesied, blazed the trail of mind on his system. I call to mind esteemed Charya Vasubandhu, who by maintaining the doubly empty system of the seven treatises of Abhidhabhidharma, clarified the philosophical theories of Abhashika Sathantika and Vijnanavada as a former sage renowned as the second omniscient one. I call to mind esteemed Dignag, the logician who gave us the discerning eye of fine discrimination by thoroughly opening 100 epistemological doors to reveal the system of Buddha's teach scriptures through the power of transcendental logic. I call to mind esteemed Dharmakirti, who fathomed the vital position points of But it's in other systems of knowledge granting conviction is a vast profound path to Sotantika Chittamatra, who was adept at expounding marvelous ways with the Dharma. I call to mind his team to Vipmukhasena, who lit the lamp, illuminating the meaning of the ornament of clarification in accordance with the Madhyamaka, middle way system, free from the extremes of existence and non-existence, the meaning of the perfection of wisdom as it came from the Sangat brothers. I call to mind esteemed Hari Bhattra, who clarified the three mothers, the supreme perfection of wisdom scriptures in line with the Maitreya Nath's fifth instructions, and who conqueror prophesied would expound the meaning of the mother. I call to mind esteemed Guna Prabha, excelling in his stability and learning, who integrated the intentions of the 100,000 categories of Vinaya and in accordance with the Mula Sarvasavada system thoroughly and unmistakably explained individual liberation. I call to mind esteemed Shakya Prabhupada, the ideal Vinaya holder, master of treasure of the three precepts qualities, who in order to ensure the longevity of the flawless Vinaya teaching thoroughly explained what the vast scriptures meant. I call to mind Joe Adisha, the kind lord who caused the Congress teaching to flourish in the land of snows, who expounded the path of the three individuals, the doctrines of the vast and profound, that are complete teaching of the conqueror, making such invocations with an unflinching pure mind to these exceedingly fine sages who are now the ornament of the world and the source of Bodhisattva's elegant teachings. May I be blessed that I may mature mindstream and achieve liberation. So forth.
Why we need inner peace or inner development? It is quite obvious now, according to medical scientists, calm mind, peaceful mind, it's very, very important for our health. Constant fear, constant anger, too much stress, very bad for our health. So now, the various different spiritual traditions actually bring inner peace. How? I think firstly, I may explain this way. Entire sentient beings, sentient being means the phenomena which have feeling or experience of pains and pleasure. That we call sentient being. So the entire sentient beings, because you see, they have the experience pains and pleasure, so naturally one desire to get more pleasure, more happiness, and naturally one desire get rid of suffering or pains. Insects, birds, animals, human beings. Even you see, those traditions, you see, accept different form of life, like devas and devis. These also, you see, want happy life, do not want suffering. So entire sentient being want happiness. Now, if those sentient beings which we can see on this planet, animals, birds, because they want happy life, do not want suffering, so their main sarvashade concern because lack of intelligence. So their real concern is sensorial level pains and pressure. Like dogs, cats, and some birds. Although they have some sort of limited intelligence, but very, very limited. So their more concern is immediate thing. So sensory level. So long, seeing something nice, not sort of frightened. Then they feel okay. A nice sound. Anyone who has some experience, you say, since my childhood, I kept some small dogs, upsaw dogs. So I noticed this, when strange sound come, then sometimes you see these dogs go that way. That I don't know. What is the reason? Their brain level, what kind of thing? Usual sound, of course, even if it's their name, they know. Come. That's a different word. Come. Ah, they come. Approach. And sort of showing the affection. They're also licking like that. So normal sound, you see, they some word they understand even, I think. Normal sound, okay. But some strange sound come. And I remember, you see, one time, what called flu, pew, like that. Then the dog. So I don't know. And then some sort of frightened sort of noise come. They immediately, you see, hide or run away like that. So, and of course, smell, taste, and touch. Touch including sex. That's reproduction, like that. So this animal, we also see some kind of animal. So we also see those sensorial levels to the experience. Very important. However, we human being, because of this intelligence, very, very sophisticated intelligence. So that intelligence also is a source of happiness and source of worry. Because of this intelligence, see, we not only concerned about day-to-day life, but next week, next month, next year, next decade, even next generation, or next century. Also, you see, because of our intelligence, we have very powerful sort of memory about past. Then also, since we have written language, therefore, you see, even 1,000 years sort of a city event, we can learn. So because of this very powerful memory and visions about the future, you see, brings mental level, satisfaction, worry, anxiety, stress. These things happen. Much bigger than animal. So because of this intelligence, we human being, you see, we develop language and script. And then eventually, or I think even maybe before even humanity, you see, develop faith. So concept of God, concept of devas and devis, that happen when we're passing through some difficulties beyond our control. Then we develop some idea, or some mysterious power there that will help us. So faith develop. Animal world, no faith. So faith, human intelligence, some relations. So it's immense help. Now faith. Basically, two levels. Theistic faith, religion. The fundamental sort of faith concept is creator. God creates all these things. Another, like Sankhyism, Jainism, Buddhism, all ancient Indian spirituality, no concept of creator. So two different things. So theistic religion, non-theistic religion, fundamentally you see two groups. See, both really immense help, both system, immense help to humanity. Not only in the past, but even today and the future also. I think at least several centuries, I think these different faiths will remain. Because see, it helps human being. Now, now the concept of creator. First, I think you translate.
हमें आंतरिक शांति की बहुत ही जरूरत है, जैसा कि सभी लोग इसके सोच इसकी प्रयास करते रहते हैं कि हमें आंतरिक शांति प्राप्त होनी चाहिए. विज्ञान के अनुसार देखा जाए तो आंतरिक शांति को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, उन्होंने भी इस चीज़ का, इस बात का जिक्र किया है कि अगर हमारा चित्त और मन शांत होता है तो हमारा शरीर भी शांत रहता है, स्थिर रहता है. हमारे अंदर बहुत सारी चिंता, भय और क्रोध इत्यादि हमारे जीवन के लिए, हमारे आंतरिक शांति के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं. तो विभिन्न परंपराओं में देखें तो विभिन्न परंपराओं में भी आंतरिक शांति को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, किस प्रकार से प्राप्त करना चाहिए, उसी के बारे में बहुत सारे व्याख्यान दिए गए हैं. बहुत सारे उन्होंने ग्रंथों के अर्थात बहुत सारे सिद्धांतों की रचना की है. जितने भी धर्म या जितने प्रकार की भी परंपराएं हैं, सभी लोग आंतरिक सुख को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए इसकी बात करते हैं. तो इससे हम सब जानते हैं कि जितने भी सत्व हैं, जितने भी जीव हैं, वो सभी लोग सुख का अनुभव करना चाहते हैं. और सत्व उन लोगों को कहते हैं जो कि सुख और दुख का अनुभव कर सकें. दूसरी भाषा में, तिब्बती भाषा में इसको सेमचेन अर्थात जिस जो चित्त धारक हो, जिसके अंदर चित्त हो, मन हो, उसको सत्व कहा गया है. तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा सुख की अनुभूति करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सुख चाहते हैं. कोई भी सत्व या जीव ऐसा नहीं है कि जो कि दुखी कल्पना करे या दुख चाहे. सभी सुखी कल्पना करना चाहते हैं, यहाँ तक कि कीड़े हों, चाहे चिड़िया हों, जानवर हों, मनुष्य आदि सभी लोग सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं. दूसरी योनियों में देखा जाए कि देव देवता या अन्य प्रकार के जो सत्व हैं, वो भी सुख की कामना करते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमें सुख प्राप्त हो सके. तो जिन सत्वों को हम लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं, जो भी सत्व इस ग्रह पर हैं, वो सभी लोग सुख की अनुभूति करना चाहते हैं, सुख चाहते हैं. तो चित्त के अनुसार अगर देखा जाए तो इसमें भी दो प्रकार के या इसमें विभेद होते हैं. तो कुछ लोगों में कम बुद्धि होती है, किन्हीं सत्वों में ज़्यादा बुद्धि होती है. जैसा कि जानवरों को देखा जाए तो उनमें कम बुद्धि होती है, कम दिमाग होता है. उसके विपरीत भी जो मनुष्य लोग हैं उनमें ज़्यादा बुद्धि अर्थात दिमाग होता है. तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि बचपन में हमारे घर के आसपास या जहाँ पर मैं रहता था तो वहाँ पर छोटे छोटे जानवर, कुत्ते या बिल्ली खा के हुआ करते थे. तो उनको मैं देखता था या जब मैं उनके प्रति प्यार दिखाता था तो वो मेरे पास आते थे, बहुत आराम से अपने दो मिलाते हुए या फिर आसानी से मेरे पास आ जाया करते थे. लेकिन उसी समय अगर हम अजीब सी आवाज़ निकालें या उनको डराएं या धमकाएं हैं तो वो भाग जाया करते थे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि जानवर भी या जो छोटे छोटे सत्व हैं या जीव हैं वो भी किस प्रकार से स्पर्श का, सुगंध का, प्रेम का, स्नेह का आदि का अनुभव कर सकते हैं। तो ये हम सब लोगों में भी अनुभव करने की क्षमता है, लेकिन अंतर यहाँ है कि हमारे अंदर या मनुष्य के अंदर जो बुद्धि है, जो सोचने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, उन जानवरों से कहीं ज़्यादा होती है। और इसीलिए हम लोग भी ज़्यादा से इसीलिए हम लोगों की या मनुष्य लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सुख की अनुभूति करना अर्थात ज़्यादा इच्छाएँ होती हैं। हम मनुष्य लोग अगले दिन, अगले सप्ते या फिर अगले वर्ष, अगले जीवन की इत्यादि प्रकार का जो समय है, इस इत्यादि प्रकार की जो कल्पनाएं हैं या फिर हमारे आने वाले समय की जो कल्पनाएं हैं वो हम लोग कर सकते हैं, जबकि जो अन्य सत्व हैं, जीव हैं, जानवर, उनमें इस प्रकार की क्षमता नहीं होती है। तो ये जितनी भी प्रकार की जो हमारी एक तरह की प्लानिंग है वो हमारी बुद्धि के अंतर होने की वजह से ही किया जा सकता है। मनुष्य में बौद्धिक क्षमता होने की वजह से ही हजारों वर्षों पूर्व जो बातें कही हैं, जो दर्शन, जो ज्ञान दिया गया है वो आज भी हम लोग उसको पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये ज्ञान और दर्शन मनुष्य ने अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपनी प्रज्ञा के अनुसार ही लिखित रूप से संजो करके रखी है, जिससे कि हम उसको समझ सकते हैं, उसको जान सकते हैं। तो हम लोगों में जो भय है, जो क्रोध है, जानवरों की अपेक्षा ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे अंदर सोच विचार करने की क्षमता उनसे कहीं ज़्यादा होता है। तो हम मनुष्यों ने भाषा का भी विकास किया है, उसको लिखित रूप में किया है, बोलचाल की भाषा का भी विकास किया है। तो इन सब की वजह से ही हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धा उत्पन्न हुई है। जब उस दर्शन, उस ज्ञान को संजो कर रखा है तो उसमें हमारे अंदर लोगों के प्रति, भगवान के प्रति, देवताओं के प्रति या फिर भगवान या जो इष्ट देव उनके प्रति श्रद्धा जागृत हुई है। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति है जो इस भवचक्र को चलाती है या फिर जो भी हमारे जीवन का जो उद्धार करने वाली है, जीवन को चलाने वाली कोई अदृश्य शक्ति है। मगर अगर हम देखें कि जानवरों के संसार में अर्थात जानवरों की योनि में इस प्रकार की श्रद्धा देखने को नहीं मिलती है, वो लोग कोई देव या देवता इस प्रकार की श्रद्धा हो इस प्रकार को देखने को नहीं मिलता है। तो श्रद्धा को भी यहाँ पर दो भागों में बांट के देखा गया है कि कुछ लोग कर्ता को मानने वाले होते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर जितनी भी सृष्टि है, जो भी ये भवचक्र है या संसार या दुनिया है, वो कोई कर्ता है, उसकी वजह से ही ये चलता आ रहा है। और दूसरी व्यवस्था में इस सिद्धांत को मानने वाले नहीं है, सिर्फ श्रद्धा नहीं है, वो लोग कहते हैं कि कोई भी कर्ता नहीं है। इस प्रकार की परंपरा को मानने वाले बौद्ध धर्म के अनुयायी, सांख्यवाद के अनुयायी और जैन धर्म के अनुयायी लोग हैं जो ऐसी श्रद्धा रखते हैं, ऐसा मानते हैं कि कोई भी कर्ता नहीं है। तो श्रद्धा करने वालों को इस प्रकार से मोटा मोटी रूप में देखा जाए कि दो वर्गों में बांट दिया गया है। और दोनों ही परंपरा के लोगों ने अभी तक इस मानव जगत के हित के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, बहुत सारे लोगों को लाभ दिया है। उनकी श्रद्धाएं अलग अलग हैं, उनकी मान्यताएं अलग अलग हैं, लेकिन लोगों को मदद करने की बात तो वो लोगों ने बहुत सारे लोगों की अभी तक मदद करते आए हैं।
फिनिश, ओके। So, theistic religion, very, very powerful, very, I think very helpful. You see, those people who single-pointed faith towards God as a creator, and different name, of course, the God or Allah, or Brahma, it's a different sort of what's it there. Sumare, Sangwa. So ultimately, you see, created by God, like that. So, that, firstly, you see, when we describe God, infinite love, so our ultimate source or creator, we are such infinite love. So then also as a creator, and according to Christianity, this very life created by God, give us by God. So therefore, really, like our Father, so some kind of very, very close feeling, very intimacy. So more intimacy, sort of feeling, more willingness to follow God's path. Now then, what is God's path? Practice of love. And in order to protect, or in order to successful practice of love, we also need tolerance, forgiveness, and contentment, self-discipline. So all religions, all major religious traditions, you see, teach us this practice. So, in order to carry this practice faithfully, seriously, the concept of God, Creator, I think very, very powerful. Then, also, since, you see, God creates us, so therefore, we also have some kind of spark of God. Buddhists say Buddha nature, seat of Buddha. So according to Christianity or according to theistic religion, yes, some kind of spark of God. Wonderful. Then non-theistic religions, see, more emphasis about our own sort of action, karma. If we create a positive action, then we get positive result. Now here, real, according to non-theistic religion, the real sort of demarcation, positive and negative, or good or bad, is on the basis of the result. Any action, any motivation which brings joyfulness, peaceful, that we want that, so therefore these actions or motivations consider positive. Any actions, any sort of way of thinking ultimately bring disaster or unhappiness. Since we do not want that, so that consider negative. There is no absolute positive and negative, now according to non-theistic sort of tradition. So everything depends on the result. Result, good, beneficial, then the causes are good. Because of that, you see, under different circumstances, one, under certain circumstances, something harmful, different circumstances can be helpful. So we have to judge according to the reality. So that's the non-theistic religious sort of, or say the concept, law of causality. We call law of causality. I want to mention here, some of my friend, the follower of Dr. Amberger, you see, in their ear, the word of karma is something very negative. So because, you see, there is some ruling class, ruling class, you see, they use the word of theory of karma. Oh, you born low class due to your karma, so you can't change. So, some people feel karma is something negative. Actually, karma is action. So sometimes we depend also, sometimes quite useful, quite helpful person who more or less lazy person. So, now everything due to karma, better to relax. This is wrong, absolutely wrong. Have some sort of difficult situation happen, we blame karma. Wrong. Who creates karma? Karma means action. So who creates action? We ourselves. Due to certain previous sort of action, some difficulties there, now we must work hard and create more forceful karma or action than the previous negative action, then become weak. We can change the result of karma. Even karma or action, you see, can neutralize where? One negative karma already committed. So its own sort of destination already there. But more stronger positive action happen. Positive karma comes. Then that negative karma now neutralize, no longer no longer is it causing or produce the negative result. So everything depend on us, on ourselves. So Buddha, now according to Buddhism, it's a Buddha state. Buddhahood, nobody can give you. The seed of Buddha, no need to seek from someone, you already have. So Buddha state, you are your own master. Your future entirely depends on yourself. If you do something wrong, Buddha cannot protect you. Buddha acting like teacher, simply teach. So real protector is yourself. You yourself as a master, no one else. So that's Buddha stated. Because of this law of karma, everything depends on oneself. So that way of approach, very, very powerful. So, according different mental disposition, to some people, the single faith, single-pointed faith towards God as a creator, very helpful. To some people, according their own mental disposition, the concept of law of causality is more effective. Clear. So therefore, you see these theistic religion, non-theistic religions, the philosophical field is differences, but doesn't matter to person according suitability. To some people, the theistic religion is much more powerful, much more effective. To some people, non-theistic religion is more helpful. Similarly, within non-theistic religion, now concept of Atma and Anatma, there's a demarcation between Buddhism and non-Buddhism. So all non-Buddhism, non-Buddhist tradition, all is except theory of soul. Meaning is something independent from this body and mind. So usually we say, my body, my mind. So still there is self who owned or possess this body and mind. When we die, the soul remain. So that's the Atma. So according those tradition who accept rebirth theory, then body and mind with this body, no longer continuation. Soul, Atma, there. So Atma take rebirth. Buddhists say, नो नो आत्मा नो आत्मा और अनात्मा मीन्स नो इंडिपेंडेंट सेल्फ सम पीपल यू सी मिसअंडरस्टैंड नॉन अनात्मा थ्योरी नॉन सोल थ्योरी means you see, not at all existence of self. It's a foolish. Buddha himself also is called I'm. So self is there. And in fact, you see, nowadays the teaching, you see, very much emphasis about altruism. If there's no self, then there's no meaning, practice of altruism. Respect other self and try to reduce self-centered sort of attitude for interest for oneself. So self is there. Then what is the meaning of non-self? Means no independent self. That means self designated on the combination of this body and mind. So therefore, we can tell male self, female self, self. So we can say, when I was young, I can say, according this body, young or healthy, I can say, when I was young, if self is completely independent from this body, then it's difficult to identify as a male and female. Female's atma and male's atma, more or less same, permanent, independent, no change, isn't it? Then difficult to say, oh, when I was young, when I was sick. No. So that means self is there, but self designated on the combination of body and mind. Otherwise, you can't say educated person or non-educated person. So I think the Shetru caste, as far as Atma is concerned, same. Brahman Atma and the Shetru caste, the Atma is same, like that. So only social sort of level. Otherwise, you see, I think God, if you accept the Creator, and particularly the Brahma, from four faces, see these what are called, because of four caste. Same source. How can make sort of distinction? A caste from front face is something superior or something. So these are social aspect, cultural aspect. I usually say, because of the belief, and also telling people, all major religious tradition, three aspects. Religious aspect, a philosophical aspect, cultural aspect. Religious aspect, all say same, love, compassion, forgiveness, tolerance, self-discipline. So all major religious tradition, same. So very helpful to humanity. Philosophical field, different sort of philosophical views. Then cultural aspect. You see, when the teaching, the particular teaching start, the condition of the society, the way of life, I think makes some differences. It seems as when Jainism and Buddhism start in India, a lot of animal sacrifice. I was told. So because of that, Jainism, Buddhism, both very much emphasis vegetarianism. So because of the social sort of circumstances, it needs some special effort. So I feel, you see, the Quran, like the Sharia law, when Muhammad, you see, give teaching, they are nomad in Arab, that part of the world, you see, more nomad. So maybe, could be, more crimes. So in the teaching, he also, you see, mentioned some sort of rule, how to deal with these criminal people. I think, like that. So therefore, and also I was told, you see, in Quran, also is there some mention about the dealing with serf samarbe, chayo, serf, isn't it? So these, I think, because of this actual circumstances, so that we should consider cultural aspect. I think of Buddhism, basically, you see, give equal male and female. So, bhikshu and the bhikshunis, Buddha give. However, when we together, bhikshu, bhikshu shuddha first or senior, even sort of as the kasoda lava the kiloma lava kemba ine tishuk tuya. This one. So therefore, these, I think, because of the social sort of condition. So I think if we, so therefore, you see three aspects: religious aspect, philosophical aspect, cultural aspect. So all major religious traditions, you see, have same potential to provide inner peace. I think theistic mainly through practice of love and faith. Non-theistic religion, more sort of explanation about the cause and result. Causality, more explanation, like Sangya philosophy, 25 points. Chizo kasa, chizo sati.
Primal factor.
Primal factor. Primal factor. And then Atma. So that Brahma factor is almost creator. Asade is something. Kasota? Dimache. Asade. Unconditioned, like that. Then Atma. So rest of 23. The explanation how life start or samsara comes, like that. So a lot of explanation about law of causality. Jainism as well. Then Buddhism, a lot of explanation. So some my friend, some Western author, they say Buddhism is not a religion, but rather science of mind. It's quite true. Lot of explanation. So actually, ancient Indian sort of tradition, lot of explanation about mind, emotion, because practice of shamatha and vipassana. Shila is common. Theistic religion, non-theistic religion. Moral contract, self-discipline. But then,
two things.
What time should finish? 11:30. Okay. So then you see the tradition, Buddhism and non-Buddhism, ancient Indian tradition. You see, those traditions include practice of single-pointed mind and insight. Then naturally, you need more knowledge about system of mind. How to develop single-pointed mind, shamatha. So what is the opposition? What are the disturbances? What are the causes of these disturbances? What's the antidote, these things? So naturally, a lot of explanation about mind. So I usually call ancient Indian psychology is very, very rich, highly developed. So modern Western psychology compare ancient Indian psychology is something like kindergarten level. Really. As a result of now, over 30 years, I have a series of discussion with scientists, mainly four fields: cosmology, neurobiology, and physics, particularly quantum physics, then psychology. So quantum physics, the Madhyamaka philosophy's view, very similar. Or Chitta Mantra sort of, certain sort of way, external things does not exist like that. So one time, Raja Ramana, Indian, the nuclear physicist, so he told me one time in New Delhi, on our meeting, you see, he mentioned he found the concept of quantum physics in some Nagarjuna's sort of text he found. So he, as an Indian, he feel proud. The quantum physics in the modern world, something new. But in this country, 2,000 years ago, already found that concept. He told me that. So quantum physics, very, very helpful. Now these days, when I give talk about emptiness, shunyata, the first step to understand the shunyata is quantum physics. Very good. So investigate. You can't find the existence from objectively. So that's exactly, you see, these Buddhist sort of, the ancient Buddhist sort of thought. Buddhist sort of concept, similar. Then, of course, cosmology and biology, all these many of these things really useful to us to learn from modern scientific findings. Like Abhidhamma Shakarika mentioned about particles and these things, but compare modern sort of scientific sort of finding. Those sort of concepts mentioned in Abhidhamma Koshakarika, quite superficial, quite rough. That I don't know that word. Okay. basic. Okay. so like that. So therefore, you see, contact or dialogue with modern scientists, immense benefit, mutual benefit. For them, Buddhist psychology or ancient Indian psychology, they found immense sort of useful, a lot of information about emotion, about mind, how to tackle emotions. like that. Kasa, simen. So, you see the real sort of disturbance about our inner peace is this destructive emotion. Injection, not answer. Or tranquilizer, not answer. Or drugs, of course, worst. And alcohol, just temporary. Drunk, oh, then it remains like that. No longer the much sort of stress there, but when drunk, gradually sort of the drunkenness there, drunkenness gradually disappear, and then stress or worry still there. So therefore, these sort of this mental level worry, stress, see, cannot eliminate or reduce by physical means. The mental levels of worry or fear or anger, these things must deal with mental level wisdom, like that, paranya. So that's the only way. So in order to do that, you see, you should know, whether believer or non-believer, everybody, you see, want healthy body, isn't it? Even anti-religious people also, you see, want also take care about their physical health. So whether believe religion or not, you see, I think it is really worthwhile to know more about the system of emotion. Then much easier, better to deal these disturbances in mind, like that. So, the both now conclusion, both is a theistic religion, non-theistic religion, all very, very helpful to bring inner peace. So, we must respect all major religious tradition. Religious harmony is very essential. Now, India, Bharat, this country, over 2,000 years, all major religious tradition live together here. That's really India's greatness. One time, Advani, I have some sort of discussion. Advani told me the very reason of successful democracy in this country is 1,000 years, you see, the practice of ahimsa and respect others' right. So not only respect different religious tradition, but also respect non-believer. So politicians, when the election period, election time, is a little harsh word, but after sort of finish, you see that, so no problem. I really remember, you see, when Indira Gandhiji, you see, the through election, she defeated Moraj Desai or take the power very smoothly. No single shot. Now, the recent election also, you see, the BJP, I think, really, Kasota won greatly like that. So these things, I think, over 1 billion population, 1.2 billion population, most populated democratic country, I think democracy really, Kasota, profoundly sort of established. This, you see, the connection, 1,000-year-old India's sort of mind, religious harmony. Religious harmony does not mean you accept everything. You keep your own different tradition, but respect others. So that world should learn from India's tradition. I always telling when I give talk in different countries, religious harmony is possible. India is living example. In philosophical fields, yes, some debate, some argument, but still respect. Advani once told me, Charvaka, Charvaka, the rest of sort of spiritual sort of the school of thought criticized Charvaka's view. Charvaka is nihilism, denying any value of spirituality. Then Advani told me, school rest of the spiritual tradition criticized that. However, person who holds that view refer rishi. Rishi means sage. So respect. That's India. So therefore, when I, one of my commitment is promotion of religious harmony. Wherever I go, wherever I give talk, I always mention religious harmony. So that's India's tradition. So therefore, I think not necessarily Tibetan tradition, but this is Indian tradition. So therefore, I consider myself as a messenger of India. Wherever I go, I always talk that. So religious harmony is very possible. You put the Zoroastrian last. In Bombay, now, this is really, I think, the bigger community of Parsi. Their population, as I understand, through talk with my friend, you see, they say, now, population, Parsi, right? Parsi population less than 1 lakh. But very successful. No fear. Isn't it wonderful? 2 years ago, I was in Jodhpur. There, one European, he develops so much interest about religious harmony. So he carries some research in Jodhpur area. He visited one Muslim village. The Indian sort of level, village means at least a few thousand people. Not a few hundred, but a few thousand must be overcrowded always. So therefore, you see, he found one Muslim village, only 3 Hindu families. No fear. Completely friendly. He really sort of amazed like that. So that's actually in the kind of the true India speaks like that. Of course, here and there are some pockets, there are some problems. That's understandable. Over a billion population, some mischievous people must be there. Otherwise, not a human being. So it is understandable. Some mischievous people say, always happen. So therefore, religious harmony is very, very possible. India is the living example. So still, you Indian, pay more attention about religious harmony. Sometimes I tell you, my Indian friend, you see, you Indian, you see, export ahimsa as well as the religious harmony in these things. But while you are exporting more and more, within the country must produce more. Otherwise, it's everything export, nothing left here. So you must sort of pay more attention about religious harmony and ahimsa. Clear? So here, I think now let me finish, you see, a few sentences. Then India's sort of one tradition is respect a non-believer. That's, I think, very, very important. India's constitution itself, you see, based on secularism. Because India, multi-religious community. Not only in modern India, but 1,000 years. So therefore, according to that reality, the constitution, if the moral ethics based on one particular religion, then complication there. Therefore, secular. Dr. Amberger, Dr. Rajendra Prasad, all these great thinkers, really wise wise men, I think these people, really. So according to Indian understanding about secularism, is respect all religions and also respect a non-believer. That's very, very realistic. Within India, out of 1.2 billion, I don't know how much non-believer, but I saw, you see, a few years ago, you see, one sort of survey, it mentioned out of 7 billion human beings, over 1 billion human being, non-believer. Then obviously, amongst about 6 billion human beings, supposed believer, but a lot of corrupted believer. So their sort of belief is superficial, not from here. You really believe God, you really believe sort of what's the values, then how can the corruption? Impossible. So sometimes I jokingly was telling my Indian friend, usually the Indians really very religious minded. So in your room, Ganesh or the Shivaji, like that, Kasa Chukuti. So, every morning, some sort of flower, some offer something, and some incense, and they recite some Sanskrit sort of the prayer. It seems, now this is a joke, it seems, you see, these people, you see, pray to God, please help me to success my corrupted life. How can? Impossible. Isn't it? One time I met some Cuban sort of refugee, came to Dharamsala. Very religious minded, Catholic, very religious minded. He truly, you see, believe God. So he told me, now he settled in Kasa Chukuti, America, Miami, or this area. So he told me every day he prayed to God, please, Fidel Castro, bring to heaven sooner the better. He against Fidel Castro, but compassionate, very, very compassionate, no hatred. So ask God, please bring to heaven sooner the better. Very good. So I think, you see, you Indian genuine believer, I think should pray to Shivaji, oh, please bring these sort of kasa corrupted people, bring to heaven sooner the better. Like that. So we really need systematic sort of way to educate people. Moral ethics, not talking about next life or heaven or God or Buddha, simply to build happy individual, happy family, happy society, ultimately happy humanity through education. So you also mentioned, oh, that's very, very important. And through school, through kindergarten, up to university level, some sort of education, make aware these inner values are key factor for happy life, happy family. So now last over one decade, with help of some American scientists and educationists, now some Indians in Delhi universities and some university in Meerut, now we already sort of involve making some curriculum about moral education about moral ethics entirely based on secular way, which can be fit in secular education field. So once we completed using that draft curriculum about secular ethics, then please you can experiment here. Start, not all, some class, and then judge after a few years what effect, if really effective, or then you can sort of expand, right? More classes or more school like that. Now translate. Too long, sorry. So long translation, and then that gives me opportunity to carry my prayer. Translate a little bit difficult. Okay.
तो इस देश में या इस दुनिया में देखा जाए कि आस्तिक लोग अर्थात आस्तिक तथा नास्तिक लोगों की परंपरा बहुत प्राचीन परंपरा है. तो बहुत सारे लोग जो कि नास्तिक हैं, जो भगवान जी अर्थात कर्ता को मानने वाले नहीं हैं, तो उन लोगों की जो परंपरा है वो काफ़ी मजबूत है. और जो अल्लाह या भगवान को मानने वाले आस्तिक लोग हैं, तो उन लोग की भी परंपरा काफ़ी मजबूत और इस दुनिया में काफ़ी वर्षों से भली भूत फली फूली है. तो कर्ता को मानने वाले लोगों को भी सोचना चाहिए कि एक दूसरे से प्रेम स्नेह करुणा इत्यादि दिखानी चाहिए. अगर कोई लोग ऐसा मानता है अर्थात कर्ता को मानने वाले लोग हैं, तो उनको समझना चाहिए कि हमारा जो कर्ता है वो हमारे पिता के समान है, हम लोगों को प्रेम देता है, प्रेम दिखाता है. उसी प्रकार से हमारा भी प्रेम उसके प्रति होना चाहिए. तो प्रेम के अभ्यास के लिए हमें, अगर हम प्रेम का अभ्यास करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे अंदर क्षमा की भावना, अच्छा व्यवहार होना चाहिए. अगर ये चीज़ें हैं तब हम अच्छी तरह से प्रेम का अभ्यास कर सकते हैं. तो सभी परंपराओं में, चाहे वो आस्तिक परंपरा हो या नास्तिक परंपरा हो, सभी परंपराओं में प्रेम के व्यवहार का अच्छी तरह से वर्णन किया गया, काफ़ी मजबूती से देखा गया है. तो चाहे हमारी परंपरा कोई भी हो, लेकिन एक दूसरे के साथ सहयोग के भाव से रहने की जरूरत है. बौद्ध धर्म के लोग भी मानते हैं कि उनके अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वो अपने अंदर उसका विकास कर सकते हैं, अर्थात करते हैं, बुद्ध बन सकते हैं. इसी उनके अंदर बुद्ध बीज होता है. उसी प्रकार से जो कर्ता को मानने वाले लोग हैं, तो उनके अंदर भी कोई चीज़ ऐसी है जो कि इस मोक्ष को प्राप्त अर्थात अपने आपका उद्धार कर सकते हैं. तो बौद्ध धर्म के अनुसार हमारे अंदर तथागत गर्भ होता है, अर्थात बुद्ध बीज होता है, जिससे कि हम बुद्ध बन सकते हैं. ये बुद्ध बीज हमें बाहर से कहीं नहीं मिलता. अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं, सकारात्मक कर्म करते हैं, पॉजिटिव कर्म करते हैं, तो हमारा फल भी उसी प्रकार से सकारात्मक होता है, अच्छा फल होता है. उसी अगर हम उसके विपरीत अगर कोई बुरा कर्म करते हैं, तो उसका परिणाम भी बुरा ही होता है. तो किसी भी प्रकार की प्रेरणा हो, प्रेरणा करने से पहले हमें सोचने चाहिए कि जो हमारी प्रेरणा है वो अच्छी तरह से होनी चाहिए. अगर हमारी प्रेरणा अच्छी है तो उससे हमें सुख की प्राप्ति होती है, और अच्छी प्रेरणा की ही हमें ज़रूरत है. अगर कोई हमें दुख दे, तो अगर कोई हमें कोई प्रेरणा या कोई चीज़ या कोई कारण हमें दुख उत्पन्न कराता है, तो इसका मतलब वो हमारी नकारात्मक सोच है या नकारात्मक वजह है. उस नकारात्मक वजह को काटना चाहिए. तो जितने प्रकार के भी हमारे सुख या दुख हैं, वो सारे के सारे हमारे कारण और प्रभाव की वजह से ही निर्भर करते हैं. तो उनको कारणों को अच्छा सोचना चाहिए. अगर उसका कारण अच्छा होगा तो फल भी सुखदायी होगा, फलदायी होगा. सत्यता के अनुसार जांच करनी चाहिए कि आखिर ये इस चीज़ का अस्तित्व या अर्थात अमुक चीज़ का जो फल है वो किस प्रकार से आता है. कर्म फल को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए. बौद्ध धर्म के अनुसार या सांख्य जैन धर्म के अनुसार भी कर्म फल पर काफ़ी जोर दिया गया, उनको समझना की कोशिश करना चाहिए. कि मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो कि बाबा साहब के अनुयायी हैं, अर्थात बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बौद्ध लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि हमें ब्राह्मण लोग या जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो कहते हैं कि आप लोग नीच इसलिए हो क्योंकि आप लोगों का कर्म ऐसा है, तो इस प्रकार की बातों से घबराने की जरूरत नहीं है, उनको समझने की जरूरत है कि आखिर ये कर्म फल का जो सिद्धांत है वो हमारे अंदर किस प्रकार से लागू होता है, किस प्रकार से हमें परिणाम देता है। तो उन लोगों को भी बुरा न समझ करके अपने आप में मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो आजकल कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी आलसी हैं और यह कर कोई उनके अंदर कोई परेशानी या फिर कोई या कोई दिक्कत आ जाती है तो यही सोच कर बैठे रहते हैं कि ये तो कर्म का फल है, ये हमारे द्वारा बुरे कर्म है उसका ही फल है, और पड़े रहते हैं कुछ नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के कर्म सोच को छोड़ना चाहिए, उसके विपरीत जो हमारे बुरे कर्म हैं उनको अच्छी तरह से कैसे बनाया जा रहा है बनाया जाना चाहिए, उसके प्रति हमें मेहनत करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हम कर्म के परिणाम को अच्छी तरह से बदल सकते हैं, जो बुरा परिणाम है उसको अच्छे परिणाम में अच्छी तरह से बदल सकते हैं। अगर हम उस कर्म को सही तरह से बदल लें तो उसे हम सकारात्मक कर्म कहेंगे, अगर उसे हम बुरे कर्म की तरफ चलते जाएं तो वो हमारा नकारात्मक कर्म होगा। तो ये सारा का सारा हम पर निर्भर करता है, कोई बाहर से हमारे कर्मों को नहीं बदल सकता, हमारे सुख हैं उनको कोई बाहर से नहीं दे सकता। तो बौद्ध धर्म के अनुसार भी कहा गया है कि जो हमारा बुद्धत्व है, भगवान बुद्ध ने खुद कहा कि हमें जो बुद्ध है कोई दूसरा नहीं बना सकता, बुद्धत्व कोई दूसरा प्राप्त नहीं करा सकता, हमें खुद ही बुद्धत्व को प्राप्त करना होगा। बुद्धत्व हमारे अंदर से ही उत्पन्न हो सकता है, हमारी मेहनत के द्वारा ही बुद्धत्व को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए स्वयं को स्वयं के अंदर झांकना चाहिए, स्वयं का अपना दीपक बनना चाहिए, स्वयं ही प्रकाश करना चाहिए, क्योंकि हम सभी के सभी जितने भी सत्व हैं वे स्वयं के स्वामी हैं, स्वयं के मालिक हैं, हमारे अंदर मन है, चित्त है, इसका परिवर्तन किया जा सकता है। और गलत करने से, अगर हम गलत कर्म करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, तो बुद्ध भी हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी मदद नहीं कर सकते हैं। इसलिए जैसा कर्म होगा उसी प्रकार से हमारा फल भी होगा। तो बुद्ध की शिक्षाएँ जो हैं, बुद्ध भगवान बुद्ध को अगर जहाँ तक समझने की बात है तो भगवान बुद्ध को एक शिक्षक के रूप में समझना चाहिए, और उनके द्वारा जितने प्रकार के भी दर्शन या धर्म दिए गए हैं उनकी शिक्षाओं के रूप में समझना चाहिए। तो भगवान बुद्ध सिर्फ हमें शिक्षा दे सकते हैं, उनको ऊपर चलने या उनका पालन करना हम लोगों का काम है। इसी प्रकार से जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जितने भी सोच समझ की बातें हैं, उनको हमको समझने की कोशिश करना चाहिए। जो लोग भगवान में श्रद्धा रखते हैं तो उन लोगों को खुश होना चाहिए और अच्छी तरह से उनके अंदर श्रद्धा रखना चाहिए। कर्ता को मानने वाले हों या न मानने वाले हों ये अलग बात है, लेकिन एक दूसरे के साथ संभाव, एक दूसरे के साथ सुख शांति से रहने की कोशिश करनी चाहिए। जो बौद्ध धर्म को, जो कर्ता को मानने वाले लोग नहीं हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म अर्थात जैन धर्म, तो उन लोग ये लोग आत्मा को नहीं मानते। जो आत्मा को मानने वाले लोग हैं वो आस्तिक लोग होते हैं। तो बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा को नकारा नहीं गया कि बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ कहा गया कि आत्मा स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं है, ये हमारे शरीर और चित्त के द्वारा या शरीर के जो अंग हैं उनके द्वारा उसको प्रतिपादित किया गया है, उसका नाम दिया गया है, ना कि उसकी स्वतंत्र सत्ता है। जो लोग आस्था को मानने वाले हैं, जो कर्ता लोग हैं, वो कहते हैं कि वो एकमात्र है, अकेली है, वो स्थिर रहती है हमेशा, अजर अमर है, इस प्रकार की सोच रखते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में इस प्रकार से नहीं माना जाता। तो बौद्ध धर्म के अनुसार अगर आत्मा बिल्कुल नहीं है, ऐसा सोचना भी मिथ्या दृष्टि है। अगर हम इस प्रकार से सोचते हैं तो मैं कल ऐसा था, ये मैं या बचपन में मैं इस प्रकार का था, तो या फिर मैं इतने में पढ़ता हूँ, ऐसा काम करता हूँ, तो इस प्रकार को भी हम नहीं मान सकते हैं, अर्थात इसको नकारना पड़ेगा। इसलिए समझना चाहिए कि स्वतंत्र रूप से उसकी सत्ता नहीं है, वो अकेले रूप से वो आत्मा नहीं है, शरीर पर निर्भर होकर ही उसका अस्तित्व है। अगर शरीर इस ये अगर हमारा जो शरीर को देखा जाए तो आत्मा इस शरीर से निर्भर न इस शरीर पर निर्भर होकर ही कहीं हमारे चित्त और शरीर पर निर्भर होकर ही अस्तित्व में आई है। तो इस प्रकार से चाहे पुरुष की आत्मा या महिला की आत्मा, इस प्रकार से दो प्रकार में विवाद किया जा सकता है। तो जब मैं बीमार था, ये अक्सर ये कहने को आता, जब मैं बीमार था, जब मैं छोटा था, तो तब मैं की जो भावना आती है अर्थात आत्मा की जो भावना आती है, तो इसका मतलब इसे नकारा नहीं जा सकता, ये आत्मा होती है। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो दलित लोग हैं तो वो कहते हैं कि ब्राह्मण लोग इस प्रकार के हम लोगों से दबाव डालते हैं, इस प्रकार से कहते हैं कि आपके कर्म की वजह से ऐसा होता है, तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, उनको समझने की कोशिश करना चाहिए। जो आज भारत में जो जात का वर्गीकरण किया गया है वो समाज के अनुसार किया गया है, ना कि कर्म के अनुसार। जिस प्रकार का समाज है उसी प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, तो उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो दृष्टिकोण को भी देखें तो यहाँ तीन प्रकार के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो धार्मिक दृष्टिकोण है वो किस प्रकार से होना चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार सभी धर्म में प्रेम, करुणा, स्नेह इत्यादि सभी धर्मों में देखने को मिलते हैं, सब में समान होते हैं। तो दूसरा है सिद्धांतिक रूप से, तो अलग अलग धर्मों के सिद्धांत अलग अलग हो सकते हैं, उनकी व्याख्याएं अलग अलग हो सकती हैं। उसी प्रकार जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण है, जो कल्चरल दृष्टिकोण है, वो भी समाज में अलग अलग दर्शन के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग पर्यावरण के अनुसार उनकी रीति रिवाज, संस्कृति अलग होती है, उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। तो भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ पर बल दी जाती है, बल की प्रथा है, तो इस प्रकार की जो मिथ्या धारणा है उनको बदलने की कोशिश करना चाहिए। बौद्ध धर्म, जैन धर्म में जहाँ तक शाकाहार की बात कही गई है, प्रबल रूप से कहा गया कि शाकाहारी बनना चाहिए, हत्या नहीं करना चाहिए, तो जो अहिंसा की बात बौद्ध धर्म में देखने को प्रचुर रूप से देखने को मिलती है। तो जहाँ तक अन्य धर्मों की संस्कृति में देखा जाए कि किस प्रकार से जो सांस्कृतिक संभाव है लोगों को किस प्रकार से एक साथ जोड़ के रख सकता है, देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म के अनुसार भी समाज की दृष्टिकोण से देखा जाए तो भिक्षु भिक्षुणियों को का भी स्थान दिया गया, सील के अनुसार उनको स्थान दिया गया है। अगर किसी भिक्षु या भिक्षुणी के सील किसी भिक्षुणी से ज़्यादा होते हैं तो उसको उच्च स्थान दिया जाता है, या फिर किसी भिक्षु के भिक्षुणी से सील ज़्यादा होते हैं तो उनको उच्च स्थान दिया जाता है। इस प्रकार की जो हमारी सामाजिक परंपरा है उस परंपरा के अनुसार रखा गया है। तो इन जो भी परंपराएं हैं वो सारी की सारी परंपराओं का उद्देश्य हमारे आंतरिक सुख को देने की होने चाहिए। और जितनी भी परंपराएं इन सब में परंपरा में इस प्रकार की क्षमता है। तो संख्यवाद हो, जैन हो, बौद्ध धर्म हो, तो जितने भी प्रकार की जो परंपराएं हैं वो परंपरा होने का अर्थ हमारे जीवन का जो क्रम है किस प्रकार से जिया जाए, किस प्रकार से रहा जाए, इसके बारे में बात करते हैं। कई लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म में, कई लोग ऐसे हमारे मित्र हैं जो कि वैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं कि बौद्ध धर्म चित्त की विज्ञान है, इसे चित्त की विज्ञान के रूप में अगर कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इसमें बौद्ध धर्म में भी देखा जाए कि अभ्यास करने की क्षमता या फिर शील इत्यादि देखने को मिलते हैं। तो जब तक हमारे अंदर शील की जहाँ बात होती, क्षमता और विवसना को समझने की जहाँ बातें होती, अपने मन को एकाग्र करने की बात होती है, तो उसके लिए हमें ज्ञान की परम आवश्यकता होती है। प्रज्ञा का हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए। प्रज्ञा नहीं अगर होगी तो क्षमता और विवसना का अभ्यास ठीक से नहीं किया जा सकता। तो प्राचीन जो भारतीय परंपरा है, भारतीय परंपरा में जो मनोविज्ञान की परंपरा है वो शायद दुनिया की सारी परंपरा में सबसे महान है। तो आधुनिक जो विदेशी मनोविज्ञान या वेस्टर्न मनोविज्ञान, जो बुद्धिस्ट साइकोलॉजी जो कहा जाता है, वो शायद प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान की इससे तुलना की जाए तो कहीं जाकर एकदम प्रथम लेवल पर, प्रथम कक्षा के रूप में समझा जाए, इस प्रकार से समझना चाहिए। उतना विकास नहीं हुआ है। तो जब तक हम इस जब अगर बौद्ध धर्म की परंपरा को जो बौद्ध जो माध्यमिक दर्शन है अर्थात चित्त मात्र दर्शन है, वो हमारा क्वांटम फिजिक्स के दर्शन के समान है। इसलिए जब तक हम माध्यमिक दर्शन को, जब तक हम क्वांटम फिजिक्स जो कि आधुनिक मनोविज्ञान अर्थात आधुनिक विज्ञान है, उसको ठीक से अगर समझना चाहते हैं तो माध्यमिक दर्शन था चित्त मात्र को ठीक से समझना चाहिए। एक वैज्ञानिक भारत के हुए राजा राम, तो वो परमाणु वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है कि क्वांटम फिजिक्स का जो सिद्धांत है मैंने नागार्जुन के ग्रंथों से लिया है। उनके ग्रंथों में इस प्राचीन जो परंपरा है उसमें हजारों सालों पहले उन्होंने इसका जिक्र किया है। और मैं एक भारतीय होने के नाते मैं अपने आप को काफ़ी प्रसन्न महसूस करता हूँ कि जो आज के युग में जो क्वांटम फिजिक्स की बात है हमारे पूर्वज नागार्जुन ने अपने ग्रंथों में भली बात कह दी गई है। तो जब भी मैं शून्यता के बारे में कहता हूँ, जब भी मैं शून्यता के बारे में वर्णन करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि पहले आपको क्वांटम फिजिक्स समझने की कोशिश करना चाहिए। तो ये जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत ही नहीं है, इन जो बौद्ध धर्म के ही सिद्धांत नहीं, चाहे नक्षत्र शास्त्र हो, जीव विज्ञान आदि जो जितने भी शास्त्र हैं उनको ठीक से समझने की कोशिश करना चाहिए। बौद्ध धर्म के अवधर्म कोश में, अवधर्म कोश करिका में भी अणुओं के बारे में बताया गया कि किस प्रकार के अणु किस तरह से कार्य करते हैं, किस प्रकार का उनका सिद्धांत है। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है कि जो विज्ञान की बात है आज बौद्ध धर्मों में भी ठीक से देखने को मिल सकती है। तो आधुनिक विज्ञान तथा मनोविज्ञान जो चर्चा इस विषय पे हमारी चर्चा काफ़ी सालों से होती आ रही है, उससे हमको काफ़ी सीखने को मौका मिला, काफ़ी अवसर मिला, काफ़ी लाभदायक है। तो हमारे अंदर जहाँ तक सुख की शांति की कोशिश करते हैं, कामना करते हैं, सोचते हैं हमारे अंदर सुख की प्राप्ति हो जाए, आंतरिक सुख मिल जाए, तो वो कोई इंजेक्शन लगाने से, दवा देने से, इत्यादि से हमारे अंदर से जो मानसिक सुख है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो जैसा कि लोग, कुछ लोग शराब पीते हैं, वो कहते हैं कि उससे हमें मानसिक सुख मिल जाएगा, तसल्ली मिल जाएगी, तो हो सकता है ये क्षणिक हो, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, इससे मानसिक सुख नहीं मिल सकता। तो मानसिक सुख जो है, अगर शारीरिक सुख से मिल जाए ऐसा भी नहीं हो सकता। मानसिक सुख हमारे केवल चित्त के परिवर्तन से ही आ सकता है। अगर हमारा शरीर हो, सही हो और उससे मानसिक सुख मिल जाए तो ऐसी कोशिश या ऐसी संभावना ही बहुत कम होती है। तो प्रज्ञा से, जब तक हमारे अंदर प्रज्ञा नहीं है तब तक हमारे अंदर आंतरिक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तो प्रज्ञा का जब तक विस्तार नहीं होगा तब तक हमारे अंदर आंतरिक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। सभी चाहते हैं कि हमारे शरीर अच्छा हो, सारा हम हष्ट पुष्ट रहें और अच्छे से जीवन जी सकें। तो इसके साथ साथ भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो मानसिक शरीर है वो किस प्रकार से ठीक हो सकता है। इसलिए आंतरिक सुख प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। नास्तिक हों अर्थात आस्तिक हों, दोनों परंपरा सुख के लिए महत्वपूर्ण हैं। सभी परंपराओं के लोग चाहते हैं कि हमें आंतरिक सुख मिल सके। आज भारत में लगभग 2000 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया है कि ये परंपराएँ, आस्तिक और नास्तिक अर्थात धर्म, भगवान को मानने वाले या न मानने वाले दर्शन, भारत में बड़े ही आसानी से, सहज रूप से एक दूसरे के साथ रहते आए हैं। तो मेरी मुलाकात आडवाणी जी के साथ भी हुई, उनके दौरान भी उनसे बातचीत में कहा, ऐसा निकल के आया कि भारत जो लोकतंत्र देश है, यहाँ पर युगों के से लोग साथ साथ रहते आए हैं, बहुत संभाव से रहते हैं, अच्छी तरह से रहते आ रहे हैं। चुनाव के समय में ऐसा होता है कि थोड़ा वाद विवाद होता है, लेकिन फिर उसके कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद सब चीज़ मन मुटाव को भूल कर फिर साथ साथ रहने लग जाते हैं। ऐसा भी चाहे पुराने समय में देख लिया जाए, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई इत्यादि लोग हुए हैं, उनके साथ भी केवल चुनाव के समय में कुछ बातचीत हुआ करते थे, बाकी के समय में अच्छी तरह से साथ साथ रहते थे लोग। आज इस युग में अर्थात खासकर इस भारत की बात की जाए, लगभग 1 अरब 1.5 अरब की आबादी है, आबादी के लोग भी बड़ी सहजता से, आसानी से एक साथ रहते हैं। यहाँ बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी रीतियाँ, बहुत सारे रिवाजें हैं, फिर भी लोग सद्भाव की भावना से यहाँ पर रहते हैं। तो दुनिया को इस भारतीय परंपरा से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से साथ साथ रहा जा सकता है, चाहे वहाँ पर बहुत सारे धर्म के मानने वाले क्यों न हों। अगर धार्मिक समृद्धि होगी, जहाँ पर धार्मिक समृद्धि, अगर धार्मिक समृद्धि चाहते हैं तो उससे पहले हमारी जो सद्भावना है, एक दूसरे के प्रति प्रेम और करुणा की बात है, उसको साथ होना चाहिए। तो ये सारी की सारी जो धार्मिक सद्भावना है कि का एक उदाहरण है, वो भारत से ही मिल सकता है। तो हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, चाहे हमारे ऋषि मुनि हों, साधु संत हों, लोग हों, उनका सभी का सम्मान करना चाहिए। और ऋषि मुनियों को सम्मान की जहाँ तक बात होती है, वो सिर्फ भारत में ही ऐसा देखने को प्राचीन समय से मिला है कि लोग बड़ी अच्छी तरह से उनका सम्मान करते आए हैं। मैं खुद भी भारत की परंपरा का मानता हूँ, भारत की परंपरा का अनुयायी मानता हूँ, और मैं अपने आप को ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं भारत की परंपरा के इस परंपरा का मैं एक दूत हूँ। भारत की परंपरा का ही मैं दूसरी देशों में या अन्य जगह जाकर के ही मैं अपनी बात को इसको कहता हूँ, और मैं पूर्ण रूप से आपको, अपने आप को भारतीय परंपरा का ही अनुयायी मानता हूँ। तो यहाँ पर भी, यहाँ तक बम्बई की बात देखा जाए तो यहाँ पर जहाँ तक पारसी लोगों की संख्या है वो लगभग 1 लाख से कम है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी आबादी में भी इतनी संख्या के लोग बड़ी आसानी से रहते हैं, एक अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो 2 साल पहले की बात है, मैं जोधपुर गया था, वहाँ पर एक विदेशी व्यक्ति से बात हुई तो वो कह रहा था कि वो रिसर्च कर रहे हैं। तो उन्होंने रिसर्च में बताया है कि काफ़ी संख्या में मुसलमानों की काफ़ी संख्या, उसमें सिर्फ 3 हिंदू परिवार हैं, बड़ी आसानी से रह सकते, उसमें कभी कोई झगड़ा नहीं होता, कोई मनमुटाव नहीं होता, तो सुखपूर्वक से रह सकते हैं। तो इस प्रकार के जो रिजल्ट हैं, जो खोज से प्राप्त हुआ है, ये बहुत ही सुखदायी बातें हैं। तो भारत ही केवल एक ऐसा जीवित उदाहरण है जहाँ पर कि सर्वधर्म संभाव की बात यहाँ देखने को मिलती है। तो आप भारतीयों ने अहिंसा का जो विस्तार किया है, बाहर देशों में भेजा है, तो मैं पुनः ऐसा चाहता हूँ या ऐसी ये कामना करता हूँ कि पुनः इसका उद्धार हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा इसका विस्तार हो सके। तो भारत का संविधान भी देखा जाए तो खुद भारत का संविधान धर्म निरपेक्ष संभाव के सिद्धांत पर ही बना हुआ है। तो जब इस प्रकार जिस देश के संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था है तो वहां पर लोगों के बीच में या समाज के बीच में ऐसी व्यवस्था होना बिल्कुल सापेक्ष है। तो डॉक्टर अंबेडकर हों, राजेंद्र प्रसाद हों इत्यादि बहुत ही महान विद्वान लोग हुए हैं जिन्होंने इस प्रकार के ग्रंथ, इस प्रकार के संविधान की रचना की है, इस प्रकार का सहयोग दिया है। तो सभी धार्मिकों तथा अधार्मिकों लोगों को भी एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कोई किसी धर्म का मानने वाला व्यक्ति है तो जो दूसरा धर्म नहीं मानता है उसका भी सम्मान करना चाहिए। और इस प्रकार की बातें भारत में ही देखने को मिलती हैं। आज दुनिया की संख्या लगभग 7 अरब से ज़्यादा है और उनमें से 1 अरब के आसपास ऐसे लोग हैं जो कि धर्म को नहीं मानते हैं, और 6 अरब के आसपास ऐसे लोग हैं जो कि धर्म को मानते हैं, धार्मिक हैं, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं। तो इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर वो वास्तव में श्रद्धावान हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो भ्रष्ट क्यों हैं, सोचने की बात है। मेरे एक दोस्त हैं तो मैं उनके घर में देखा कि गणेश विष्णु इत्यादि की पूजा करते हैं, तो मैं ऐसे ही मजाक में कहा कि आपको पूजा करनी चाहिए कि जितने भी भ्रष्ट लोग हैं उन लोगों को तुरंत मुक्ति मिल जाए, इस भ्रष्टाचार से दूर हो जाए, तो ये आपकी सार्थक पूजा होगी। एक प्रकार का जोक मजाक भी है लेकिन सत्यता भी है। अभी फिलहाल कुछ साल पहले की या कुछ दिन की बात है कि एक मियामी के, अमेरिका के मियामी के एक व्यक्ति ने कहा कि मैं पूजा करता हूं और ऐसा पूजा करता हूं कि मैं जल्दी से स्वर्ग में पहुंच जाऊं, जल्दी से मुक्ति मिल जाए, इस प्रकार की मैं पूजा या भावना करता हूं। तो जो शिव जी के मानने वाले हैं, शिव जी की प्रार्थना करते हैं, तो उनसे मैं कहता हूं कि आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि जो लोग भ्रष्ट हैं उनको मुक्ति मिल जाए, वो स्वर्ग में चले जाएँ, जिससे कि यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म हो सके। तो सुखी परिवार, समाज तथा देश को अच्छा बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। बिना शिक्षा के द्वारा ये सारी चीज़ों को प्राप्त करना मुश्किल है। हम लोग नीति शास्त्र के आधुनिक युग में शिक्षा की नीति किस प्रकार से होनी चाहिए उसके ऊपर हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार का जो कार्य जब सम्पन्न हो जाएगा तो इस संस्थान में भी लागू करें और कोशिश करें कि पहले शुरुआत में इसमें लागू करें, कुछ बच्चों को पढ़ाएं, फिर धीरे धीरे इसका विस्तार करते जाएं, जिससे कि ये आने वाले भविष्य के लिए एक अच्छी तरह नीति शास्त्र के रूप में बन सके, अच्छी शिक्षा के रूप में ये कारगर सिद्ध हो सके।
थैंक यू। Now, time for khana.